हमारी फैमिली का अवस्था अच्छी था, हमारे सीनियर जनरल का अवस्था है ये उनका भी वक्तव्य का समापन मैं आचार्य अमृत चंद्र जी आत्मज्ञानी गीता का एक कलश जो बहुत ही भाववादी है उसका बुझाने को देना और उनका होगा कलश टू थर्टी वन
मात्र हार्डवेयर से सुशोभित नहीं होती है
बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाए, हर एक साल में मेरी सुविधाएं हो जाए, अच्छे अच्छे बाथरूम क्लीनिंग कर रहे हैं, इतने मामले से कोई व्यवस्था गौरवान्वित नहीं होती है जब तक कि उसमें निर्माणी की धारा और विशेष द्वारा जो तत्व ज्ञान दिया गया है उसका मनन चिंतन पठन पाठन बारम्बार न होता है। देवलाली में जैसे भी प्रतिदिन की सभा में सुबह 40,000 लोग शाम को 15,000 लोग उपस्थित रहते ही हैं, फिर भी 5-7 अवसर ऐसे आते हैं लगभग 7-8 जिसमें बाहर से भी सैकड़ों भाई बहन आकर इस निर्माणी गंगा में स्नान करते हैं। विशेष रूप से जैसे कि 7 वर्षों से मोना ने एक विशेष आंदोलन चलाया है, एक विशेष प्रयोग करके विद्वानों को पहले से वो विषय देके उनसे आग्रह करके आप विषय से तैयारी करके आए, इस तरह जो और भी जगह शिविर सब लगते हैं परंतु इस शिविर में जो गहराई से तत्व का चिंतन मनन होता है वो और बड़ी संख्या जहाँ उपस्थित होती है वैसे शिविरों में उतना संभव नहीं हो पाता है। तो शिविरों में तत्व संख्या को और अधिक गहराई तक ले जाने के लिए और उन के प्रवचनों को आधार बनाकर उनकी वाणी को आधार बनाकर चिंतन मनन की धारा प्रवाहित करने के लिए ये मोना संस्था विशेष रूप से अभिनंदन के पात्र हैं। मैं अपनी ओर से भी और ट्रस्टी ओर से भी इन सबको बहुत बहुत इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि अभी लक्ष्मी भाई ने संकेत किया, अरुण जी अभी आपके सामने नाम प्रतिबद्ध शोभित होंगे, जिन देवलाली के लिए चाहे वो नए हो, अरुण जी आया अपना स्थान ग्रहण कर दो। जैसे अभिनंदन वहीं से अरुण जैन पार्थिव यात्राचार्य इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उनके जो इनके पारिवारिक संबंध है जयपुर में जब ये पढ़ते थे उस समय में जयपुर में ही रहता था और परिवार से अत्यंत निकट संबंध खासकर हमारे भारतीयों से बहुत ज्यादा इनका स्नेह था। और जैसा कि अभी कल ही शायद डॉक्टर साहब के व्याख्यान में आया था, अरुण दादा ने बोला कि ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो लघु सिद्धांत को भी पढ़ते से पढ़ा सके, बोले मैं भी नहीं पढ़ा सकता ऐसा बोले कल के व्याख्यान में डॉक्टर साहब। यानी समय साल प्रश्न साल वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, प्रज्ञानियों के ग्रंथ करणानियों के ग्रंथ भी यहाँ पढ़ाए जाते हैं, उनकी भी चर्चा होती है, परंतु व्याकरण जैसे मुख्य विषय में गहराई से प्रवेश करना और उसका शिक्षा देना, पता नहीं अरुण के दिमाग में क्या आया कि उन्होंने शुरू से ये लक्ष्य बनाया कि मैं शास्त्री के बाद जब आचार्य करूँगा, आचार्य मतलब कहने तो मैं व्याकरण से लेके करूँगा, और उन्होंने संस्कृत व्याकरण को अपना विषय बनाया। अनेक वर्षों से काफी दिन वो अलवर में ही रहे और आजकल जयपुर के पास ही महापुरा नाम का गांव है जहाँ राष्ट्रीय संस्कृत कॉलेज है, इसमें प्राचार्य के पद पर सुशोभित है। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जब मैं जयपुर गया था तो उन्होंने खुद मुझे आपके बताया कि लगभग 4-6 महीनों से कुछ गुरुदेव के प्रवचन को सुनने का अत्यंत गहराई से एकाग्रता से सुनने का कोई अपूर्व रस उनके भीतर पैदा हुआ है और वे कभी कभी ये सुनती रहती है तो दिन में 3-4 प्रवचन कंटिन्यू गुरुदेव श्री के सुनते हैं। उन्होंने मुझसे चर्चा भी की कि गुरुदेव श्री के किस प्रवचन में कौन सी बात किस तरीके से आ रही है वो सुन रहे हैं, तो व्याकरण जैसा उनका विषय थी और अध्यात्म जैसा आनंदमय विषय थी, इन दोनों का संगम उनके शुद्ध ज्ञान में प्रवाहित होता है जिसका लाभ हमें जो चिंता शक्ति का विषय जो लेंगे उसमें हमें मिलेगा। दूसरे हमारे साथ में जो युवा विद्वान हम देख रहे हैं वो शास्त्री, इन्होंने पिछले साल जब मैं होली के अवसर पर सोचा गया था, इन्होंने आगे स्वयं मुझसे प्रस्तावित किया रहेगा शास्त्री जी का दिन हो चुका है और मैं ऐसे भी मुझे बाहर कॉफी कॉफी की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं करता रहा हूँ, मेरा मन बाहर की नौकरी में नहीं लगता, मैं चाहता हूँ किसी संस्था में अगर मेरी सेवाएं नहीं आए तो मुझे शब्दों का भी लाभ मिलेगा, अभ्यास भी गहरा और सेना होगा और मेरा जीवन सार्थक होगा। तो ऐसी भावना बहुत दुर्लभ लोगों में होती है बच्चा, क्योंकि हम तो लोगों को मनाते हैं कि आप संस्था में आएंगे अच्छी से अच्छी संस्थाएं देने की कोशिश कर देंगे कोशिश करेंगे समझे आदमी भाई जानते हैं अच्छी तरह से। तो उन्होंने कहा उसकी कोई बात नहीं है, जो आप वहाँ पे आप उसे समझेंगे हम स्वीकार करेंगे। अभी तो जीवन की चाल नहीं हुआ है तो बहुत ज्यादा माथे पूजा भी नहीं है, लेकिन मैं संस्था में रहना चाहता हूँ और यहाँ पर भी हमें ऐसे विद्वान की जरूरत तो महसूस हो ही रही थी। कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है कि मैं मुझे भी बाहर जाना पड़ता है और वैसा पहनते जी को भी जाना पड़ता है, तो जो शास्त्र अभ्यास भी करे करावे और यहाँ की जो संरक्षण व्यवस्था है आपका जो थोड़ा नक्शा चेंज होता हुआ देख रहे हैं, ये इसमें अरुण जी का भी बहुत बड़ा चिंतन और योगदान है। सभी भाई के इंतजार और सहयोग से समय पर सीढ़ी चालू हो जाना, प्रवेश जो जो हम चाहते हैं वो ग्रहण वो उसमें आ जाना, इसी तरह मंदिर में पूजन तैयारी के समय सबके सहयोग देना, विधान में सहयोग देना, इन सबके लिए यहाँ एक विद्वान की बहुत आवश्यकता थी। और हमें बड़ी खुशी है कि नई उम्र के विद्वान ने इस क्षेत्र में साहस किया है संस्था में आने का, हम सब कर्तव्य भूमि से उनका स्वागत करते हैं। मैं और जिसको इसका डायरेक्ट में तो मोटानी जी से संपर्क होता है इसलिए वो इसमें आने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, लेकिन मैं इनको आश्वस्त मैंने किया है और हमेशा करता हूँ कि थोड़ी तकलीफ भी हो गए थोड़ा समझ लो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम भी आवे थोड़ी हिम्मत करके यहाँ खड़े रहना खड़े रहना, जैसे हमें चले आता है जैसे मोर कुमार में हम यहाँ खड़े हुए हैं, जैसे हिम्मत नहीं हारना। एक इनकी जो कला या प्रतिभा है जिसका हमें अंदाज नहीं था, हम तो ये सोच के यहाँ लाए थे कि ये खाली प्रवचन और हॉल का भी सीमित रहेंगे मंदिर का सीमित रहेंगे, लेकिन हमारे ऑफिस को भी जिन्होंने अपने कई निगाहों से देखना चालू किया है, भोजनालय को कई निगाहों से देखना चालू किया है, कोई सामान गबल तो नहीं आ रहा है, खराब तो नहीं हो रहा है, क्या कैसी व्यवस्था है, जब कोई फंक्शन हो गए तो पूरी भोजनालय धुलवा देना, पूरा आंगन धुलवा देना, पूरा हाथ धुलवा देना, कहने का आते बड़े उत्साह थे, उन्होंने व्यवस्था में भी अपना योगदान दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। जब यहाँ समय देता है तो मुझे स्वाध्याय का भी काम मिलता है, अपने ज्यादा समय में लेते हुए हर व्यक्ति अनुरोध करता हूँ कि ये अपना मौका भी प्रारंभ करें।
Thank you. फिर भी पता नहीं ये क्रम क्यों रखा। समग्रता और गहराई प्रेरणा जो जीव को आत्म कल्याण के लिए चाहिए वो पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन में आ जाए। फिर भी क्रम का निर्वाह करना है तो परिशिष्टता का अध्याय प्रारंभ करेंगे। उससे पहले ब्रह्मचारी डायमंड जी पर्व के दिनों के विषय में कहते हैं। वैसे पर्व शब्द का अर्थ होता है पर्व अर्थात पवित्र पर्व। 79 पर्व जो पवित्र करे उसे पर्व कहते हैं। अनादि से यह आत्मा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण से अपवित्र है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के कारण से ही पवित्र होता है। द्रव्य दृष्टि की चर्चा यहाँ नहीं है। त्रिकाली गुरु भगवान आत्मा अनादि काल से ही पर्व है पवित्र है शुद्ध है। पर्याय ने उसका आश्रय नहीं दिया इसलिए अनादि से पर्याय जैसी मलिन की आग भी वैसी ही मलिन है अशुद्ध है अपवित्र है। पंच परावर्तन में चार गतियों में भटक रही है। यदि इसको मिटना है तो पूज्य गुरुदेव जी का ब्रह्म शास्त्र सुत्रिकाली जायक भगवान आत्मा परमात्मा है ये नक्की कर यही निर्णय कर और ऐसा भी अनुभव कर। यदि ऐसा करे ऐसा जीवन में हो तो ये वह समय वह दिन हमारे लिए पर्व का होगा। सामान्य बात जो ब्रह्मचारी रायमंडल ने लिखी है उदाहरण दिया उन्होंने कि जिस समय बाजरे के बोने का समय होता है उस समय यदि उसे बोया जाए तो वो अच्छी फसल देता है और यदि सही समय पर नहीं बोया जाए तो तुच्छ फल देता है। दो बातों की गई है। सही समय पर बोया जाए तो अच्छी फसल देता है और सही समय पर न बोया जाए तो अच्छी फसल नहीं देता है। ऐसा उदाहरण दिया है। इसी प्रकार से पर्व के दिन होते इन पर्व के दिनों में उन्होंने एक बात और कही कि पर्व के दिनों में किया गया थोड़ा सा भी धर्म विशेष फल देता है और थोड़ा सा भी पाप विशेष दुखदायी फल देता है। ये बात भी साथ में उदाहरण के माध्यम से समझे। ऐसे ही हमारे जीवन में ये पर्व आते हैं। यद्यपि काल कोई आपके भीतर धर्म लाकर भरेगा नहीं इससे पहले भी अष्टांग का पर्व आए अष्टमी आती है चतुर्दशी आती है वो काल कोई आपको धर्म आपके भीतर प्रकट नहीं करेगा लेकिन प्रेरणा जरूर मिलती है तो और दिनों में नहीं कम से कम ऐसे सुदर्शन चरित्र बना होगा अष्टमी चतुर्दशी के दिन सुदर्शन भी स्मशान में जाकर वस्त्र आदि का त्याग करके आत्मध्यान करते सुनाई होगा। अर्थात ये काल का निमित्त मात्र है, याद दिलाने के लिए, प्रेरणा दिलाने के लिए कि अनादि काल से तू विरागत जीवन जी रहा है, आज तक तूने अपने स्वरूप को नहीं निहारा है, ये अवसर है, ये काल है कल्याण का, धर्म धारण करने का, उसकी चर्चा करेंगे। धर्म मतलब क्या, अभी मुझे उल्लेख कीजिए प्रवचन में, अनंत गुण और पर्याय को धारण करना इसे भी धर्म कहा था, वस्तु स्थिति की अपेक्षा उसकी चर्चा भी करेंगे। यहाँ धर्म का अर्थ ये है कि अनादि काल से विचार करने की बात है कि यह पर्याय अनादि काल से ही मलिन रही है। चैतन्य जाए भगवान आत्मा का आश्रय स्वयं ने स्वयं का आश्रय नहीं लिया, पर का आश्रय लिया है। सुबह से शाम हो जाती है, अनादि से आगे तक इस समय तक वही क्रिया, पराश्रय की क्रिया, पर की ओर देखने की क्रिया, जिसके कारण से परिणति मलिन रहती है, जिसके कारण से परिणति निषिद्ध हो, निर्मल हो, सच्चा ज्ञान और आनंद प्रकट हो, ऐसी क्रिया इस जीव के द्वारा नहीं हुई। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन भी अनंत बार हुआ, ये क्रिया भी हुई, लेकिन एक क्रिया नहीं हुई। कौन सी? आत्मा को जानने की क्रिया, उसे उद्देश्य अभिजोग का कहने दो शब्द आए रहने वाले, एक तो व्यक्ति मात्र और दूसरा शब्द आएगा ज्ञान मात्र। ज्ञान मात्र भाव के साथ अनंत शक्तियाँ रहती है और व्यक्ति मात्र क्रिया के साथ अनंत शक्तियाँ उठती है। ज्ञान दिया, ज्ञान मात्र भाव के साथ अनंत शक्तियाँ रहती है और व्यक्ति मात्र क्रिया के साथ अनंत शक्तियाँ उठती है। ये चर्चा भी आगमन करेंगे आज, मतलब अब से प्रारंभ करेंगे। वास्तव में मूल वास्तव ये है कि धर्म शब्द के लिए ब्रह्मचारी रायमंडी ने लिखा कि इन दिनों में किया गया थोड़ा सा धर्म। थोड़ा सा धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब क्या? क्योंकि सुबह से उठे, स्नान पूजन आदि हुआ, विधान आदि हुआ और ऐसी क्रियाएं पूर्व पर्याय को ध्यान रख करके विचार किया जाए तो 28 मूल गुणों का पालन भी उस जीव के द्वारा आनंद बार हुआ, 11 अंग का अध्ययन भी आनंद बार हुआ है। लेकिन नहीं हुआ है तो क्या नहीं हुआ? कौन सी क्रिया नहीं हुई, कौन सा ज्ञान नहीं हुआ? दो ही बात है कि एक ही ज्ञान नहीं हुआ कि आत्मा में अनादि काल से ज्ञान है, लेकिन साधु की रात उस ज्ञान में आज तक आत्मा नहीं। अनादि काल से आत्मा में ज्ञान है, प्रति समय है। मुझे मुझे ऐसा जानन 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 उसकी भी चर्चा करेंगे। कितनी आश्चर्य की बात है, बाहर में वैभव देख कर आश्चर्य होता है, जी लौकिक लौकिक दृष्टि पर है और ऐसी भी दृष्टि अंतरंग में हो तो अंदर का वैभव देख करके, मिर्जा अंदाज देख करके, चैतन्य जायक भगवान आत्मा को देख करके आश्चर्य होगा। रास्ते क्या होगा? अरे आज काल से मैंने अपने स्वरूप को अपने अलावा बाकी सबको देखा, बाहर देखा, छात्रों को देखा, शब्दों को देखा, क्रियाओं को देखा, आत्म के अनुकूल क्रियाओं को देखा, उसके अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष होते हैं, वो दोष नहीं रहे क्रियाओं में, उसका भी ध्यान रखा, लेकिन वो भी चीज का ध्यान नहीं रखा। एक शब्द हो गया है स्वामी जी के प्रज्ञा ब्रह्म है। चैतन्य गायक भगवान आत्मा मैं हूँ ये निर्णय नहीं कर पाया, निर्णय नहीं कर पाया। ये एक क्रिया घर गई और इसके बिना देव टूट गई। स्वामी जी ने उदाहरण दिया था अभी साथ है जीवन भर पंचायत ये है। यदि हाल हम भी दामोदर सेठ की तरह न रहे इसका ध्यान रखना। जीवन भर पंचायत की रंग के समय में आप हम जाते नहीं करते क्या? दूसरे का काम दिया, दूसरे का काम दिया, मैंने मेरा काम नहीं किया कि बाहर का काम दिया, शरीर की समाज की परिवार की चौकड़ा गाय की समय की रोटे मुंडन करा, लेकिन इतना समर्थ निमित्त होने के बाद जिनको समित को कई बार प्रवचनों में कहते कि ये बात तो संभालने के लिए भी नहीं मिलती, कामवानो न वाले हैं, लेकिन इतना भाग्य इतना पुण्य तो लेकर आए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इतना पुण्य लेकर आए हैं तो इतना पुरस्कार तो नहीं करना, इतना पुण्य लेकर के तो बैठे हैं, लेकिन इनके जाति का पुरस्कार भी लेकर चले हैं। ये बात सुनने को तो मिल रही कि मूल बात ये है, मूल का मार्ग ये है, मुझे ये करना चाहिए, ये बात तो सुनने को मिल रही है, लेकिन साथ में सुनने में संतुष्ट मत होना। इन्हीं प्रवचनों में शक्तियों के प्रवचनों में कुछ जी ने अच्छाई के मूल गुणधारी निर्दिशा पालन करने वाले द्रव्य निर्मित साधु की चर्चा कि द्रव्य निर्मित साधु का ज्ञान राज में अच्छा पड़ा है। और दूसरी बात उस भंग कचाई में ही उसने संतुष्टि करी, इसलिए वह शुद्ध पुरुष के अनुभव तक नहीं होगा। इतना पुण्य मिला इतनी संतुष्टि मत करना कि पुण्य रूपे श्री के सानिध्य से निमित्त से इतना पुण्य तो है कि मूल बात सुनने को मिल गई। मूल बात मतलब क्या कि अपने स्वरूप की बात सुनने को मिल रही है, इतना तो पुण्य है। बात समझ में आ गई? लेकिन क्या नहीं है उस शुद्ध चैतन्य को ग्रहण करने के लिए किसी परिचित के प्रवचनों में क्रम बताते हैं। लाला जी की चर्चा हुई थी, क्रम ये है कि आत्म कल्याण के लिए क्या करें, तो क्रम क्या है क्या कहते हैं? सत्समागम। पहला नंबर सत्समागम, दूसरा नंबर सत का श्रवण। सत्समागम, सत का श्रवण, श्रवण के बाद सत का ग्रहण। क्या लिखा? सत का ग्रहण, ग्रहण के बाद धारण, धारण के बाद रुचि, रुचि के बाद पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के बाद परिणाम। ये क्रम बताया। शुरुआत कहाँ थी? सत समागम, फिर उसका ग्रहण श्रवण हो, फिर ग्रहण हो, ग्रहण के बाद धारण हो, धारण के बाद रुचि हो, तो धारण किया हुआ है दूसरी के अनुसार पुरुषार्थ हो, तो पुरुषार्थ के बाद परिणाम हो, कितना कार्य करें सब जाते थे क्रम। क्या किसी दूसरे को सुनने और सुनाने के लिए नहीं? ज्ञान धारा अंतरंग में कैसे प्रवाहित हो, चैतन्य की धारा अंतरंग में कैसे प्रवाहित हो? ब्रह्मचारी रायगढ़ जी ने कहा कि इन दिनों में किया गया थोड़ा सा धर्म भी विशेष फलदायी होता है, तो जो थोड़ा सा धर्म धर्म मतलब क्या कि जब अंतरंग निज चैतन्य जाए भगवान आत्मा के निज वैभव को अपने वैभव को यह भी निहारता है। जब अपने चैतन्य की दृष्टि दी होती है तो अंतरंग में शांत रस की धारा प्रवाहित होती है। चैतन्य जायत भगवान आत्मा को देखने पर ही सब रहे, तो उसको देखने पर ही अंतरंग में शांति की धारा प्रवाहित होती है, उसके बिना नहीं। जिसके लिए अभी मुझे के प्रवचनों में शब्द आया था अंतःपातिनी, जैसी क्रिया की अंतःपातिनी अनंत शक्तियाँ है। अंतःपातिनी का मतलब उसंती, जैसे बटन है स्विच, उसको ऑन करते हैं तो उसके साथ जितने हजारों लाखों अनंत बल्ब होंगे, वो बटन के ऑन के साथ अंतःपातिनी है, वो एक साथ जलते हैं, उनसे एक साथ प्रकाश उत्पन्न होता है। ऐसे ही जगत्या में चैतन्य जायक भगवान आत्मा दृष्टि गोचर होता है, अनुभव में आता है, ऐसी व्यक्ति क्रिया। इसके पूर्व के प्रवचनों में स्वामी जी ने ज्ञान पद्धति व्याख्या की कि ज्ञान किसे कहना, ज्ञान मात्र आत्मा है। क्योंकि अपन लोग भी शुरू करेंगे, इसमें ये सत्य लिखा है कि हमसे जिसना त्यागवाद से जन्म परिशिष्ट का प्रारंभ हुआ। परिशिष्ट का मतलब क्या है? परिशिष्ट मतलब क्या? परि मतलब कुछ और, शिष्ट मतलब बचा हुआ। और अब तक कहते आए हैं, अब तक कहते आए जाऊंगे, फिर भी बचा हुआ है। प्रश्न ये है का कि बचा हुआ क्यों? कुछ शुरू के लेखन में कमी रह गई, समझाने में कमी रह गई, क्या बचा क्यों है? प्रश्न क्या है? क्या अभी बचा हुआ उसको कहना चाहते हैं, जो बात पहले कही गई है या कोई बात रह गई है। पहली कही हुई बात कोई विशेष रूप से कहना हो, पहली रही हुई बात कुछ बची हुई हो उसको कहना है, या कोई नया कहना, बात समझना। परिशिष्ट का मतलब तीन दिन है, पहले कही हुई बात में कोई रह गया हो, कोई विशेष रूप से कहना हो उसको कहें, विशेष रूप से कहना हो तो अब तक कहते आए हैं, क्या अभी भी बाकी है? कल भी स्वामी जी का प्रवचन कहेगा, ये प्रश्न होगा कि क्या आज के प्रवचन में तुम्हें कोई कमी रह गई? प्रवचन को सिद्ध करने के लिए विषय की दृष्टि से तो स्वामी जी के प्रवचन लगने चलेंगे, परिशिष्ट में वो बात आती है कि उक्त है, अनुक्त है या पुनरुक्त है। तो क्या प्रश्न ये है कि उससे पहले कुछ रह गया था या नया क्या कहना चाहते? और इसी ग्रंथ में आज चार लाइन कोई लिखता है तो अपने नाम से प्रकाशित कर देता है, तो अलग से लिखते थे ग्रंथ, परिशिष्ट क्यों बोला? तो मान लेता है तो हो ही नहीं है। यहाँ एक शब्द आया है जिसका विचार करेंगे, यहाँ दिया है अत्र त्यागवाद सिद्ध्यर्थम, और वस्तु तत्व व्यवस्थित उपाय उपे भावस्य मना गुरोप सिद्ध है। क्या लिखा है कि त्यागवाद सिद्ध्यर्थम, इतनी संक्षिप्त समझ में आ गई कि त्यागवाद की सिद्धि के लिए। प्रश्न ये है कि त्यागवाद असिद्ध था, त्यागवाद की सिद्धि के लिए तो सारे प्रश्न उत्पन्न होगा कि त्यागवाद असिद्ध था क्या? त्यागवाद की सिद्धि के लिए दो बातों का विचार करते हैं। एक विचार है पहले की सोलहवीं शक्ति का जल्दी मैंने बताया है, इस पर चिंतन विचार जो मुझे स्वामी के अनुसार रखना है, लेकिन उसकी भूमिका मुझे जरूरी है आज का प्रारंभ कर देना। और ब्रह्मचारी रायण जी के अनुसार इन दिनों में किया गया थोड़ा सा धर्म भी विशेष फल प्रदान करता है इन दिनों में थोड़ा सा धर्म। अब धर्म यदि प्रकट हो जाए सत्य धर्म की बात है बहुत चैतन्य जाय भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली जो कल्याय है वो निश्चय से सच्चा धर्म है। वो प्रकट होने के बाद थोड़ा सा विशेषण नहीं लगता समझना दूंगा। चैतन्य जाय भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली कल्याय वो थोड़े से शब्द से संतुष्ट नहीं होती। पुरुषार्थ की दृष्टि से भाव की दृष्टि से वो पर्याय अपने स्वरूप में ही रहना चाहती और अपने स्वरूप के बारे में ये जानती है कि मैं अनादि काल से भ्रम में जी रहा था, अपने आप को अधूरा दुखदायी मानकर पर का आश्रय लेता था। हकीकत तो ये है कि वो पर्याय ने निर्णय किया कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मैं अनंत शक्तियों का भंडार हूँ, अनंत शक्तियों का गोदाम हूँ, मुझे किसी पर की आवश्यकता नहीं, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। ऐसा जो निर्णय जिस पर्याय में इस प्रकार के निर्णय को धर्म कहते हैं, न कि क्रिया को ज्ञान को धर्म कहते हैं कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, अनंत शक्तियों का पिंड हूँ, अनंत शक्तियाँ होने पर भी ऐसी एक भी शक्ति नहीं है कि मैं कर्ता नहीं करूँ। सिद्धांत है समय काल की चौरासी सत्यासी छियासी गाथा है कि मेरा और पर द्रव्य का व्याप्त व्यापक संबंध नहीं है और व्याप्त व्यापक संबंध नहीं होने से भोग और भोक्ता का संबंध भी नहीं है, क्योंकि व्याप्त व्यापक संबंध के अभाव में मेरा पर द्रव्य के साथ भाव्य भावक संबंध का भी अभाव है। न मैं करता हूँ न पैसा भोगता हूँ। व्याप्त व्यापक संबंध के अभाव के कारण से मैं करता और पर द्रव्य मेरा कर्म ऐसा नहीं है और भाव्य भावक संबंध के अभाव के कारण से मैं भोगता और पर द्रव्य मेरा भोग ऐसा नहीं है। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ क्योंकि अनंत शक्तियों का पिंड। प्रश्न ये है यहाँ पर मेरे पास खुद ज्ञान है और अनंत शक्तियों को मैं जानू कैसे। सिद्ध ज्ञान की सीमा है संसार को जाने का और ये ज्ञान की सीमा है असंसार को जाने का और अनंत को जानने के लिए केवल ज्ञान चाहिए और निर्णय कौन करेगा सिद्ध ज्ञान करेगा। तो कैसे करेगा मेरे पास सिद्ध ज्ञान है। सिद्ध ज्ञान है अनंत शक्तियों का निर्णय कैसे तो स्वामी जी ने तो उत्तर दिया सामान्य तंत्र कर सकता है विशेष समय नहीं कर सकता। दौलत है सामान्य तंत्र कर सकता है विशेष समय नहीं कर सकता। परोक्ष समय कर सकता है प्रत्यक्ष समय नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष समय का जो केवल ज्ञान में प्रवेश प्रत्यक्ष होता है कुछ तो है कितनी शक्तियाँ देखो कैसे चेहरे उतर रहे हैं प्रभु तुझे स्वयं की महिमा नहीं आ रहे तो कोई दूसरा पड़ोसी लाकर तुझे स्वयं की महिमा नहीं लाएगा। स्वयं की महिमा दूसरा आचार्य आदि बता सकते हैं कि तो ऐसा तत्व है कुछ मुझे सिर्फ बता सकते हैं। महिमा तो स्वयं को ही आएगी। स्वामी जी बता सकते हैं कि तेरा तत्व ऐसा है कि अचिंत शक्ति स्वयं ही तो अचिंत शक्ति कि तेरे में शक्तियाँ कितनी है चिंता कल्पना नहीं कर सकता। आकाश के प्रदेश सबसे अधिक बताए जाते द्रव्य में आकाश द्रव्य के प्रदेश सबसे अधिक उससे भी अनंत गुणी शक्तियाँ अनंत गुणे गुण किसमें मेरे में फिर भी ऐसा होते हुए भी पर की ओर देखता है, जानता है, पर की ओर देखना और निहारना अधर्म है, स्वयं की ओर देखना और निहारना धर्म है। जिससे निर्मल परिणति हो वो क्रिया धर्म क्रिया है। ऐसी धर्म क्रिया के लिए क्या करना, कहते हैं कि चार द्वार से आत्मघाती शिक्षा दी थी अमृत चंद्राचार्य जी ने, तो कहते मम परिणति, मेरी जो परिणति है अनादिकाल से मलिन हो रही है उसकी सिद्धि के लिए इसकी रचना करना। अब आपके एक प्रश्न है कि हम इतना परिश्रम करते हैं, दूर दूर से आए हैं, बैठे हुए किस लिए ये सब किस लिए? ये अनादिकाल से जो परिणति मलिन थी उस मलिन परिणति के लिए चैतन्य जायक भगवान आत्मा का आश्रय नहीं मिला, इसलिए वो मलिन ही रही और अब तक रही तो रही, अब आगे नहीं रहे। अब तक रही तो रही लेकिन आगे ऐसी मलिन नहीं रहे, क्योंकि उसकी मलिनता होना, उसका मलिन रहना ये नपुंसकता का दोष है। तो अनंत पुरुषार्थ का पिंड है, स्वामी जी का सानिध्य मिला हुआ है, फिर भी परिणति मलिन रहे और मलिन परिणति के साथ देह छूटे, इतनी निकोला की बात नहीं। अनंत पुरुषार्थ का धनी होते हुए तुझे अपना कार्य करने के लिए संगी पंचेंद्रिय दशा मिली, स्वामी जी जैसे का निमित्त मिला, फिर भी परिणति मलिन रहे, ये अच्छी बात नहीं है। वही चर्चा संग्रह में ब्रह्मचारी आनंद जी ने ये इस प्रसंग मुनिराज के द्वारा बताया कि मुनिराज वन जंगल में क्यों रहे, कि चैतन्य जाए भगवान आत्मा के अनुभूति के पश्चात जब जीव को भान होता है कि इन तत्वों से मैं अनादिकाल से बेखबर था, इसके आश्रय से जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, अतीन्द्रिय शांति रस की धारा प्रवाहित हुई, उसमें खंड न पड़े, उसमें खंड न पड़े, वो रस धारा अखंड रूप से प्रवाहित रहे, इसलिए वन जंगल में जाते। वन जंगल में क्यों जाते, एकांत में क्यों रहते हैं? तो चैतन्य जाए भगवान आत्मा के लिए आश्रय है, जो अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय सुख परिणति में प्रकट हुआ, उस चैतन्य जाए भगवान आत्मा के भोग में खंड न पड़े। और इसके आगे लिखा उन्होंने कि उस चैतन्य जाए भगवान आत्मा के भोग के लिए भी तो चक्रवर्ती का वैभव जीर्ण चिंते के समान त्याग दिया, ये कारण की बात है। बाहर के वैभव की महिमा तो छोड़ो, लेकिन बाहर का वैभव कितना, 9 लाख हाथी, एक हाथी के पीछे 100 रथ, 100 रथ के पीछे 100 घोड़े, 100 घोड़ों के पीछे 100 मनुष्य, ऐसा तो चतुरंग बल है। और ऐसी कितनी ही अक्षौहिणी सेनाएं, ऐसी बड़ी बड़ी अक्षौहिणी सेनाएं, स्वामी जी ने शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण दिया। शुभम चक्रवर्ती हीरे के पलंग पर सोता, महल ऐसे युद्ध मत्सर के नहीं होते, रत्नों के महल होते हैं चक्रवर्ती, और कुर्मती कैसे मर गया ब्रह्म मर गया शुभम चक्रवर्ती का भी उसमें, वो चक्रवर्ती मर गया। आश्चर्य था, एक समय पहले इतना वैभव और एक समय बाद काफी नरक चला, क्या शोभा है, आत्मा की आराधना के बिना जीवन में कुछ भी शोभा नहीं है। चैतन्य जाए भगवान आत्मा के आश्रय के अलावा परिणति को कोई आश्रय दिलाने योग्य नहीं। कभी कुछ करने का मन भी करे और सुबह से शाम तक करने का भाव होता है, करने का विकल्प होता है, तो एक भी काम करें कि अपनी परिणति को चैतन्य जाए भगवान आत्मा का आश्रय दिलाए, बाकी करने योग्य कुछ भी नहीं। इतना वैभव होते हुए भी ऐसा महिमा स्वामी चैतन्य जाए भगवान आत्मा के जिसके एक समय के आनंद में संसार का सारा रस टूट जाता है, उसे की आवश्यकता नहीं रहती कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो। कि चैतन्य जाए भगवान आत्मा के अनुभव से बाहर का रस अपने आप टूट जाता है, और यदि उसका आश्रय नहीं मिला तो कितना ही उपदेश दे वो टूट नहीं होता। संसार शरीर भोगों से वैराग्य अपने आप परिणति में प्रकट होता है। अत्र त्यागवाद सिद्धार्थम ये शब्द आया परिशिक्षण प्रारंभ में कि त्यागवाद की सिद्धि के लिए क्या है कि चारवाद की सिद्धि के लिए दो बातों के विचार की यहाँ चर्चा की। कौन कौन सी दो बातें? एक तो बताया वस्तु तत्व व्यवस्थित और दूसरा बताया उपाय उपेय भाव। कितनी बातें बताई? दो बातें। किस लिए बताई? चारवाद की सिद्धि के लिए। तो चारवाद किसे कहते हैं? क्या उसमें असिद्धि होती है? तो त्यागवाद किसे कहते हैं? त्यागवाद वो ही समस्त वस्तु तत्व साधकम एकम अस्खलितम साधनम अरहत सर्वज्ञ। अच्छे लगते हैं बोलने में भी अच्छे लगते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं।
आपको ज्यादा अच्छे लगते हो
स्वामी जी के कारण से जब उन्होंने मर्म खोला तब जाकर के बहुत अच्छे लगते। बाकी संस्कृत तो कई पढ़ते हैं। हाँ, त्यागवादो ही नाम समस्त वस्तु तत्व साधकम एकम अच्छलितम साधनम अरहत सर्वज्ञ। त्यागवाद अरहत सर्वज्ञ का अस्खलित साचन है, कुतर्कों से खंडित हो ऐसा नहीं। त्यागवाद अरहत सर्वज्ञ से अरहत परमात्मा सर्वज्ञ परमात्मा का अस्खलितम साचनम शासन
का
प्रयोग। चादवाद वो ही चादवाद क्या है? ये हमने लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ा कि वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक होता बराबर, और उसको समझाने की जो शैली है उसको चादवाद कहते हैं। तो चादवाद कैसा है? और यहाँ गाथा श्लोक में ये लिखा है कि चादवाद सिद्धार्थम, चादवाद की सिद्धि के लिए ये परिशिष्ट लिखा है। किसके लिए लिखा गया? चादवाद की सिद्धि के लिए। अब चादवाद की सिद्धि कैसे हो कि वस्तु तत्व की जो व्यवस्था है वो समझ में आ जाए बराबर, वस्तु के तत्व की व्यवस्था समझ में आ जाए। दूसरी बात, मुझे तो मेरा आत्म कल्याण करना है कि मैं उपाय हूँ उपेय हूँ और मेरे लिए उपाय क्या है बराबर। दूसरा कि साधवाद की सिद्धि कैसे हो? कि साधवाद की सिद्धि तो अनादि काल से थी आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। मेरी परिणति में अभी जागवाद की सिद्धि नहीं। मैंने बहुत सी क्रियाएं की है, मैंने बहुत से शास्त्र भी पढ़े और अर्थ जानने का भी प्रयास किया, क्रियाओं के द्वारा परिणामों को संभालने का भी प्रयास किया, लेकिन अभी मेरे जीवन में चारवाद की सिद्धि नहीं हुई है। मेरी परिणति में आज भी चारवाद असिद्ध है। मेरी परिणति में चारवाद आज भी असिद्ध क्यों है? क्योंकि दोस्तों, दो नंबर की समयकार की गाथा कि अज्ञानी को मुनि व्रत धारण करने के बाद भी राग के प्रति राग रहता है और राग के प्रति अंत मात्र भी राग रहे तो उस ज्ञानी अज्ञानी के जीवन में अभी चारवाद की सिद्धि नहीं। क्रिया करे, परिणाम करे, अभिप्राय करे, अभिप्राय में जो वासना है वो भी बनी न रहे तो क्रिया परिणाम अभिप्राय के बाद भी चारवाद की सिद्धि नहीं हुई, क्योंकि अभिप्राय की वासना में अभी मलिनता पड़ी कि चारवाद सिद्ध्यर्थम कि पहली बात सामान्य बात कि सामान्य अपेक्षा से विचार करे तो चारवाद तो अनादि काल से अर्हत सर्वज्ञ साधनम चल जाए। अर्हत सर्वज्ञ साधन साधनम उपदेश कि अर्हत सर्वज्ञ परमात्मा का उपदेश है। चारवादो ही चारवाद अर्हत सर्वज्ञ परमात्मा का शासन है। शासन मतलब वो राजा है और वस्तु उनके राज्य में रहने वाली चीजें हैं ऐसा नहीं। प्रत्येक परमाणु जीव शासन में राजा है। प्रत्येक अणुअणु जिनेन्द्र भगवान के शासन में राजा है, क्योंकि जो किसी के अधीन न रहे उसको राजा कहते हैं। यहाँ तो प्रत्येक वस्तु प्रत्येक परिणमन समझ प्रवचन में आएगा कि मैं अनंता अनंत गुणों का धारी चैतन्य जाए भगवान आत्मा मेरे अनंता अनंत गुण और मेरी अनंता अनंत पर्यायी और उन अनंतानंद पर्यायों में पाए जाने वाले अविनाशी प्रतिच्छेद वो प्रत्येक भिन्न भिन्न है, एक दूसरे में शामिल नहीं है। राजा है ये एक का दूसरे में प्रवेश नहीं है, एक के कारण से दूसरा नहीं। यहाँ जिन शासन में शासन का अर्थ भी प्रशासन और शासन नहीं, यहाँ तो प्रत्येक परमाणु राजा बताया जाता है। शासनम का तो उपदेश किसका उपदेश लिखा अर्हत सर्वज्ञ के अर्हत परमात्मा का कैसे है अनंत परमात्मा सर्वज्ञ है, सबको जानने वाले बिना जाने उपदेश नहीं करते, बिना जाने उपदेश नहीं करते। सर्वज्ञ ने मेरा स्वरूप क्या देखा, सर्वज्ञ ने मेरा स्वरूप ऐसा देखा है कि मुझमें अनंतानंद शक्तियाँ है, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मुझे अपना कार्य करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगले कैदल आप में कहेंगे कि सर्वज्ञ परमात्मा का शासन अर्थात उपदेश कैसा है ये तो इस पंक्ति में बताया, अगली पंक्ति में ये बताया कि अर्हत सर्वज्ञ परमात्मा ये कहते हैं कि विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं वो अनेकांतात्मक है। अगली पंक्ति में सर्वम अनेकांतात्मक शिष्य ने प्रश्न किया था कि ज्ञान मात्र वस्तु है, आत्म वस्तु ज्ञान मात्र है ऐसा आप कह रहे हो, जबकि मुझे तो ये पता है कि वस्तु ज्ञान मात्र नहीं है, अकेले ज्ञान मात्र नहीं है। समझ के प्रवचन में आप खुल जाएगा कि वस्तु मात्र ज्ञान मात्र नहीं है, बल्कि वस्तु में अनंतानंद धर्म है और अनंतानंद धर्मों के साथ अनंतानंद शक्तियाँ है। इन सबको वस्तु धारण करती है, धारण करना इसे धर्म कहा है। आर्थिक धारण किया हुआ है वस्तु, किसे? अनंत गुणों को धारण किया हुआ है, अनंत गुणों के पर्याय को धारण किया हुआ है। ऐसे धारण किया हुआ है वो धर्म, ये तो वस्तु धर्म हुआ। लेकिन तेरे लिए पर्याय की सिद्धि का धर्म क्या हुआ? कि वस्तु ऐसी ही है, ऐसा निर्णय करना तेरी निर्मल पर्याय के लिए धर्म हुआ। वस्तु ने धारण कर रखा है, एक धर्म तो ये हो गए। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, कैसा है? कि सर्वम अनेकांतात्मा। तुम तो केवल एक जीव की बात कर रहे हो। श्री चंद्र ने दिया कि ज्ञान मात्र वस्तु है, ऐसा आपने कहा, जबकि वस्तु केवल जीव है। तो भैया केवल जीव की बात नहीं, केवल एक वस्तु की बात नहीं। और दूसरी एक बात भी आपका ध्यान गया होगा, आपके प्रवचन में गया ही होगा, मैं तो दोहराने के लिए गया हूँ। ईसावी जी ने कहा था कि जगत मात्र ज्ञान मात्र, ये जो दो शब्द आए, ज्ञान मात्र आत्मा को कहा। तो ज्ञान मात्र क्यों कहा? कि ज्ञान मात्र जो ज्ञान जगत क्रिया है, वो अनंत गुणों को भी जानती है, अनंत पर्यायों को भी जानती है, और मैं क्रिया की ध्रुव वस्तु हूँ ऐसा भी जानती है। और ऐसा जब ये ज्ञान मात्र ज्ञान चैतन्य जाए भगवान आत्मा को अपना विषय बनाता है, विषय बनाने के साथ ही अनंतानंद गुणों में निर्मल परिणमन प्रारंभ होता है। ऐसा शक्तियों का निर्मल परिणमन उसी को अंतःवासिनी, उसी को अनंत शक्तियों का उछलना और उसी को जगति मात्र किया कहा। ज्ञान को मुख्य रखकर क्यों कहा? कि ज्ञान कवल बता सकते हैं अपने स्वरूप के निर्णय के अलावा। समझे में आया था कि राग ये न अपने आप को जानता है न अन्य को जानता है। राग कैसा हो? जड़ है। क्यों जड़ है? जड़ का जो लक्षण है अपने आप को नहीं जानना और अन्य को भी नहीं जानना, ये जड़ का लक्षण है जो राग में लक्षित होता है। राग अपने आप को भी नहीं जानता और अन्य को भी नहीं जानता, ज्ञान से भिन्न है। अपने आप को भी जानता है, अपने आप को जानता है मतलब व्यक्ति क्रिया में जो ज्ञान है वो अपने आप को त्रिकाली ध्रुव जानता है। व्यक्ति क्रिया कौन सी? ज्ञान मात्र। विनय से पहले के प्रवचनों में ज्ञान मात्र की ज्ञान कौन सा? कि ज्ञान वही जो आत्मा का प्रकाश करे, आत्मा का अनुभव करे, पर को जाने, पर को प्रकाशित करे, वो ज्ञान ही। यहाँ ज्ञान नहीं, यहाँ शब्द लिखा और इसलिए भी अत्र शब्द लिखा है। अत्र त्यागवाद सिद्धम, कि त्यागवाद की सिद्धि के लिए ही कौन सा ज्ञान? बहुत कि जो अपने चैतन्य स्वरूप को प्रकाशित करे यहाँ उसे ही ज्ञान कहते हैं। और ऐसी ज्ञान की क्रिया को ही जगत क्रिया कहते हैं। ऐसी जो ज्ञान की क्रिया है उसको जगत क्रिया कहते हैं। यहाँ कहते हैं कि त्यागवाद किसे कहा गया है? कि त्यागवाद तो क्या चीज है? पहले बताया कि अर्हत सर्वज्ञस्य शासनम। कैसा शासन है? अखंडितम, खंडित न हो, अखंड से कोई कुतर्क करे, कोई वो करे तो खंडित नहीं है। आचार्य कहते हैं कि अपने निज वैभव से मैं समय साल की व्याख्या लिखता हूँ। तो वैभव कहाँ से प्रकट हुआ? पांचवी व्याख्या में प्रकट हुआ है। आप उनका सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उल्लेख, यहाँ तक तो खंडित हो सकता है। यहाँ तक खंडित हो सकता है, लेकिन अनुभव के बाद, अरे कई लोगों के कितने हीन पुण्य है, कैसे किस अपेक्षा से भाव आया कि कईयों को तो ये बात सुनने को नहीं मिली। कई लोग ऐसे सामान्य होते तो मैंने मोक्ष और कलाजग में तीन जगह लिखा बोला जगत तो बोला है, कभी संख्या देख करके उधर भाग जाता है, मूल तत्व से दूर चला जाता है, कोई बाह्य क्रियाओं से प्रभावित होता है, कोई लोभ से प्रभावित होता है, मूल तत्व से दूर चला जाता है। हमारे जीवन में ऐसा न हो है? ये संसार ये आगे तक भी रहे अनुभूति चैतन्य जाए भगवान आत्मा यही एकमात्र परम आराध्य व्यक्ति जीवन का है। यह अष्टांगिका पर्व में जिसका यही एकमात्र आराध्य है अष्टांगिका पर्व मनाना उसी का था। अर्हत सर्वज्ञ परमात्मा का जो शासन है वो अनुभव से उत्पन्न हुआ, युक्ति का अवलंबन वगैरह सब किया, अनुभव हुआ, सर्वज्ञ केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो अस्थलितम आगे कहते एकम चलता है एकम अपनी कल्पना भी नहीं अन्य मत भी नहीं मेरी बात नहीं कि अपनी कल्पना से भी नहीं और अन्य मतों से भी मुक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं होता है। अर्हत सर्वज्ञ परमात्मा के अनुशासन से भी मुक्ति का मार्ग अंदर जाने का मार्ग मुक्ति का मार्ग मतलब अपने स्वरूप तक जाने का मार्ग एकदम एकदम सकते था। एकदम मतलब अन्य मत भी नहीं और अपनी कल्पना भी नहीं। आचार्यों ने तीर्थंकर सर्वज्ञ परमात्मा ने जो बताया है वही एक मार्ग और कहता है कि उस मार्ग पर चलेगा साधकम इतना तो विश्वास कर रहे कि वही एकमात्र मार्ग साधकम सत्यम साधन करने वाला अर्थात अपने स्वरूप की आराधना का साधन करने वाला है, अपने स्वरूप तक ले जाना वाला है और ऐसा है कि समस्त वस्तु तत्व केवल एक चैतन्य जाए भगवान आत्मा तक पहुँचाने वाला यदि कोई मार्ग है, अपने स्वरूप से जुड़े हुए जीव को अपने स्वरूप तक ले जाने वाला यदि कोई मार्ग है तो वह अर्हत सर्वज्ञ परमात्मा का मार्ग है। उसी मार्ग से स्वरूप की प्राप्ति होती है, उसी मार्ग पर रहने से स्वरूप की साधना होती है। उनके प्रवचन में एक बात कही है कि साधना करते करते ही ऐसे प्रसंग आते हैं कि यह भी सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद भी राग की मंद राग की परिणति में एकत्व कर बैठता और मंद राग की परिणति में एकत्व करना ही अस्थितिकरण है। कौन मर्म खोल सिद्ध भक्ति जी तो उपभुवन अंग के इसमें शब्द आता है सिद्ध भक्ति का अर्थ आत्म भक्ति स्वामी जी के अलावा कौन है। अस्थितिकरण मतलब क्या कि जिसको आज तक स्वरूप की प्राप्ति हुई ही नहीं उसके लिए तो स्थितिकरण ही अनाधिकाल स्थितिकरण मतलब क्या कि समय दृष्टि का अंग है। ये समय दर्शन प्रकट होने के बाद भी उपदेश की मुख्यता से या मंद नशा के शास्त्र की मुख्यता से या ज्ञान के सौषम की मुख्यता से दूसरों को समझाने की मुख्यता से राग में यह भी अटक जाता है ये अस्थितिकरण है। रजनी भाई वहाँ खिला रहे हैं क्या कहते हैं ये अस्थितिकरण का मतलब क्या कि जीव का राग में अटकना ये अस्थितिकरण है उसके कारण से स्थितिकरण प्रकट नहीं हुआ। इसका इतना सा है कराने का यह जीव भी अनादिकाल से किसी न किसी प्रकार से राग में अटका पड़ा है। स्वाध्याय कर रहा है ज्ञान में सब तो नहीं अटका पड़ा है, क्रिया कर रहा है तो वहाँ अटका पड़ा है। राग से भिन्न चैतन्य जाए भगवान आत्मा इसीलिए हेतु गोचर नहीं हुआ, राग में अटका है इसलिए राग से भिन्न शुद्ध चैतन्य जाए भगवान आत्मा दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आत्मा है, अजत का नहीं होता तो दृष्टि में होता अटका है, नियम से अटका है। अब कौन से राग में अटका है, किस प्रकार के राग में अटका है? जीव असंख्य प्रकार के परिणामों को लिए हुए रहते हैं। कौन किसने अटका हुआ है? लालजी, लालजी समझ आगे कोई पता नहीं, कोई किसी का काम अटका है, कोई किसी राग में अटका है, लेकिन अनुभूति नहीं हुई है, समय दर्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब अटका पड़ा। बाहर जितना भी अपने आप को उजला उजला कर ले, जब तक अटका रहेगा तब तक चैतन्य रस्सी रस धारा प्रकट नहीं। समस्त वस्तु तत्व साधकम, कि समस्त वस्तु में मैं ये चैतन्य वस्तु, मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे समस्त वस्तुओं की दरकार नहीं। इन्हीं प्रवचनों में स्वामी जी ने एक वाक्य ऐसा आया था कि वस्तु की व्यवस्था के लिए ज्ञान की दरकार नहीं, तू ज्ञान गए तो वस्तु में कुछ नया प्रकट हो जाए, ऐसी दरकार वस्तु को नहीं। अनादि काल से अनंत शक्तियों से भरी हुई चैतन्य वस्तु आप है, पोते से स्वयं है, लेकिन उसकी ओर नहीं देखा, उसका ध्यान नहीं किया, लक्ष्य नहीं किया। इसलिए तूने लक्ष्य नहीं किया तो इसमें कुछ कमी रह गई, लक्ष्य करेगा तो कुछ वृद्धि हो जाएगी, नहीं ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। तो स्वयं निर्णय कर ले कि उसको देखकर सुखी होना है या उसको देखे बिना अनादि काल की तरह आज भी सुखी रहना है, ये तो स्वयं निर्णय कर ले। यहाँ तो समस्त वस्तुओं का साधक एकमात्र अस्थलित जिनेन्द्र परमात्मा का जो शासन है, सर्वज्ञ परमात्मा का शासन, उसे सर्वज्ञ कहा, मुझे अनंत वस्तुओं की दरकार नहीं, मुझे अपने चैतन्य गायक भगवान आत्मा की दरकार है। मेरी परिणति की विशुद्धि के लिए अगले स्तर पर तो ये भी कहेंगे कि जब चैतन्य गायक भगवान आत्मा दृष्टि में आता है तो ज्ञानी के सुर बदल जाते हैं, वो कहते हैं कि परिणति में सिद्धि हो या सिद्धि हो, मुझे उसकी फिक्र नहीं। ये बात देखने से पता ये निर्णय हो जाता है कि परिणति मलिन हो अथवा निर्मल हो, मैं तो अपने आप में सदाकाल शुद्ध हूँ, मुझे परिणति की भी दरकार नहीं। यहाँ यद्यपि चार्वाक सभी वस्तुओं का साधक है और सभी वस्तुओं की साधना मुझे नहीं करनी, मुझे तो आत्म साधना करनी है, तो मेरी आत्म साधना के लिए भी सर्वज्ञ परमात्मा का जो शासन है, वो जब सभी वस्तुओं की वह साधना कराता है तो चैतन्य वस्तुओं की भी साधना अवश्य करा देगा। बात समझ वाली, इसलिए मुझे सर्वज्ञ परमात्मा के शासन के द्वारा अपने चैतन्य जाए भगवान आत्मा का निर्णय करना है। इस पंक्ति को पढ़ करके सवा दस तक है, हाँ सवा ग्यारह तक है, पाँच मिनट है ना, हो गया समय, हो गया। एक पंक्ति पढ़ करके अर्थ बाद में करेंगे, उसका लोभ विशेष हो रहा है, संस्कृत भाषा की वजह से। देखो अत्र तु यहाँ तो आत्मवस्तुनि ज्ञान मात्र है, ये आत्मवस्तु को ज्ञान मात्र का, अब ज्ञान मात्र कहा तो क्या हुआ, अनुशासन माने, अपनी अनुशासन माने कि सर्वज्ञ परमात्मा ने ये बात बताई, क्या बात बताई, अब करिए अपन बात में जोड़ेंगे आज के इसमें बात है कि इतना कहा तो वस्तु ऐसी है ऐसा बताया, कि चैतन्य आत्मवस्तु ज्ञान मात्र है, ऐसा अभी शास्त्र माने अभी समझाने पर भी न तत्परिपूर्ण कि उस चादवाद ने गुस्सा नहीं किया तो गुस्सा करता है कि न तत्परिपूर्ण चादवाद को गुस्सा नहीं आया। क्या कि साधुवाद को गुस्सा क्यों नहीं आया? हमने आत्मवस्तु को ज्ञान मात्र कहा, हमने आत्मवस्तु को क्या कहा? ज्ञान मात्र कहा। तो ज्ञान मात्र कहने पर भी साधुवाद ने हमारे उस वाक्य पर तत्व परिकोप हमारे वाक्य पर साधुवाद ने गुस्सा नहीं किया, लेकिन तुम्हारे मन में ज्ञान मात्र कहने से शंका है। इसका मतलब तुम्हारे विचार में तुम्हारे परिणति में चादवाद अभी विशुद्ध नहीं है, उसकी शुद्धि के लिए आगे चर्चा बन जाए।